गर्व को जैसे ही पता चला कि विराज और बाकी टीम हर हाल में आशिका को अपने साथ काम करने के लिए रखना चाहती है, उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि वो आशिका को इस बारे में सतर्क कर दे। कहीं ना कहीं गर्व भी यही चाहता था, लेकिन वो स्वार्थी होकर आशिका को मजबूर नहीं करना चाहता था। एजेंसी में रहकर कभी गर्व आशिका से खुलकर बात नहीं कर सकता था। वहां हर वक्त हर काम करने वाले एजेंट पर नज़र रखी जाती थी। ऐसे में गर्व ने आशिका के सामने बाहर लंच करने का प्रपोजल रखा, जिसे आशिका ने एक्सेप्ट कर लिया था। गर्व सीनियर पोजीशन पर था और आशिका को वहां से ले जाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे विराज से परमिशन मिल गई थी तो वहीं आशिका भी तैयार थी। आशिका के दिल में यही चल रहा था कि वो कुछ भी करके आज अभिमान से बात कर सके। एजेंसी के पार्किंग एरिया में आते ही आशिका गर्व के बगल वाली सीट पर बैठी और उसकी तरफ देखकर बोली, सो कैप्टन गर्व की गर्लफ्रेंड होने का कुछ तो एडवांटेज है। आशिका के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। गर्व ने आंखें घुमाई और जवाब में बोला, चाहे तो ये एडवांटेज पूरी लाइफ उठा सकती हो। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड होने के और भी बहुत से एडवांटेज हैं। और वो क्या? आशिका ने गर्दन टेढ़ी करके पूछा। इतना हॉट और हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ उम्र बिताने के लिए तैयार बैठा है, इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? गर्व ने हल्के अंदाज में कहा और फिर गाड़ी स्टार्ट की। आशिका बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई थी और बाहर की तरफ देखने लगी। गर्व उसे अपने साथ एक फेयर में लेकर गया था, जहां अलग अलग कंट्री से जुड़े लोग साथ में इकट्ठा होकर किसी तरह का फेस्टिवल मना रहे थे। वहां पर इंडियन भी थे। उस जगह पर आकर आशिका को अच्छा लग रहा था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो दोनों टहलते हुए नॉर्मल कपल की तरह चल रहे थे। आशिका ने चलते हुए पूछा, अब बता भी दो कि मुझे रोकने के लिए कौन सी घटिया ट्रिक्स अपनाने का सोच रहे हैं वो लोग। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। गर्व जिस तरह से उसे यहाँ पर लेकर आया था और उसने पहले ही उसे सतर्क करने की कोशिश की थी, उसे आशिका समझ गई थी कि एक बार फिर वो उसे अपने साथ काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशिका के चेहरे पर अफसोस के भाव थे और आज भी वो उस पल को कोस रही थी जब उसने डार्क वेब एक्सप्लोर करते हुए एक साइबर अटैक को डीकोड किया था। हमला होने से पहले ही आशिका ने उसे संभाल लिया था और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी मदद के बाद वो उम्र भर उन लोगों से बंद कर रह जाएगी। एजेंसी ने तुरंत इसकी लोकेशन को ट्रैक किया और वो आशिका तक पहुंच गए थे। उसके बाद जब भी कोड रेड की सिचुएशन आती, आशिका को उनके लिए काम करने के लिए जाना ही पड़ता। आशिका ने गहरी सांस ली और गर्व की तरफ देखा। पिछली बार भी गर्व ने ही आशिका को ढूंढा था। आशिका ने आंखें छोटी की और उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तुम मुझे हर बार कैसे ढूंढ लेते हो? क्या तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती? मैं अपने रूम में बैठकर भी तुम लोगों का काम कर सकती हूँ, फिर मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब तुम्हें मेरे सीनियर बेहतर तरीके से दे सकते हैं, गर्व ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। और वो मुझे इसका जवाब नहीं देने वाले, आशिका ने बुझे हुए स्वर में कहा। ये काम खत्म करते ही तुम चली जाओगी और उम्मीद है कि इस बार किसी अच्छी लोकेशन पर जाना, ताकि मैं भी तुम्हें ना ढूंढ पाऊं, गर्व ने होठों पर फीकी मुस्कुराहट लिए हुए कहा। जरूरत पड़ने पर आशिका को ढूंढना उसके काम का हिस्सा था, जिससे वो गद्दारी नहीं कर सकता था। मैं दूसरी दुनिया में भी चली जाऊंगी, तब भी तुम ढूंढ लोगे, और इस बार तुमने मुझे ढूंढकर मेरी हेल्प की ही है, आशिका ने जवाब दिया। उस हेल्प के बदले क्या आज मुझे ट्रीट मिल सकती है? गर्व ने पूछा, जिस पर आशिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो दोनों घूमते हुए हर एक स्टॉल पर जाने लगे। दूसरी तरफ अभिमान से आशिका की एजेंसी ऑफिस होने की बात सुनते ही रेहान तुरंत अपनी लोकेशन से वॉशिंगटन जाने के लिए निकल गया था। जब आशिका गर्व के साथ बाहर गई हुई थी, तब रेहान वहां पहुंचा और उसे तुरंत कैप्टन विराज के सामने लाया गया। कैप्टन विराज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, जबकि रेहान उनके सामने नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। विराज ने सिर हिलाकर कहा, तो तुमने उसे जानबूझकर कांटेक्ट नहीं किया? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है? मुझे पूरा यकीन है कि ऐश ने अब तक सब सही कर दिया होगा, रेहान ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। तो तुम इतने अच्छे से जानते हो उसे, विराज ने भौहें चढ़ाकर कहा। रेहान को घूरने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है तुम्हें दुनिया घूमने का बहुत शौक है और जिस तरह से ऐश एथिकल काम करती है, तुम्हारा ये शौक मुश्किल से पूरा हो पाता है। काम के चक्कर में वैसे भी टाइम नहीं मिलता है सर, रेहान ने जवाब दिया। वो अच्छे से जानता था कि विराज उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और अभी टाइम मिलने लगे तो तुम जहाँ जाना चाहोगे तुम्हारे हर एक ट्रिप को एजेंसी स्पॉन्सर करेगी, बस बदले में तुम्हें ऐश को यहाँ रुकने के लिए मनाना होगा, विराज ने सीधे सीधे अपनी शर्त रख दी थी। रेहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। उसने विराज की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मुझे अकेले घूमना पसंद नहीं है, मैं हमेशा ऐश के साथ ही जाता हूँ। नो डाउट एजेंसी के पास काफी फंड है और वो इसे अपने फायदे में जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्सर करने का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप मेरे और ऐश दोनों के ट्रिप स्पॉन्सर करें, वैसे वो भी तो आपके काफी काम आती है, इतना डिजर्व तो करती है। रेहान की बात सुनकर विराज जोर से हंसा, डोंट एक्ट स्मार्ट, तुम जानते हो कि मुझे ऐश की जरूरत है, जरूरत मुझे भी है, रेहान बोला।
ठीक है, फिर देखते हैं कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। वैसे तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो ऐश के साथ मिलकर काम करो। यहाँ रहोगे तो मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे, विराज ने जवाब दिया। रेहान ने हल्के से सिर हिला दिया था। वो जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगा, तभी पीछे से एक पेन हवा में उड़ता हुआ आया, जिसे रेहान ने बिना पीछे देखे अपने हाथ में थाम लिया था। अभी भी वही चीप ट्रिक्स, आई एम नॉट अ किड नाउ, जिस पर आप पीछे से हमला करके जीत पाओगे, रेहान ने भौहें से कोड़ कर कहा। तरीका चाहे जो भी रहा हो, तुम्हें हैंडल करना मुझे तब भी आता था और अब भी लिटिल ब्रो, विराज ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा। रेहान विराज का छोटा भाई था, उसे भाई बुलाने पर रेहान घूर कर देखने लगा। मुझे ऐसे मत देखो, डोंट टेल मी तुमने उसे अभी भी ये नहीं बताया कि तुम हमेशा से एजेंसी के लिए काम करते थे और उसे यहाँ तक पहुँचाने वाले तुम ही थे। पहले उसे यहाँ तक पहुँचाया और अब उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, सो डबल स्टैंडर्ड्स, विराज ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यही तो काम रहा है आपका हमेशा से, पहले मुझे काम करने पर मजबूर किया और अब ऐश को करना चाहते हैं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं ऐश के साथ कभी नहीं होने दूंगा, रेहान ने दांत खींचते हुए कहा। विराज को बुरी तरह घूरने के बाद रेहान वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आशुतोष कुछ काम के चलते पूरी रात सिंघानिया ग्रुप में काम कर रहे थे। सुबह के 4 के करीब जब वो घर पहुंचे, तब काजल उनका इंतजार कर रही थी। तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, आशुतोष ने नाराजगी जताते हुए कहा। हालांकि ये लंबे वक्त बाद हुआ था जब काजल उनका इंतजार कर रही थी। पूरे दिन आराम ही तो करती रहती हूँ और सिर्फ आप ही हैं आशु जिससे अपने दिल की बात कह सकती हूँ, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ, काजल ने भारी आवाज में कहा और अपना सर आशुतोष के कंधे पर टिका दिया था।
आशुतोष के चेहरे पर भी लाचारी के भाव उभर आए थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर कहा, मैं चाहकर भी तुम्हारी बात उससे नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोई और ऐसा है जिससे तुम बात कर सकती हो और आशिका के बारे में ही बात कर सकती हो, आखिर उसे भी सच जानने का हक है, हमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। काजल हैरानी भरी निगाहों से आशुतोष की तरफ देखने लगी। आशुतोष ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, अपनी बेटी के चक्कर में फिर से अपने बेटे को अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो ऐसे ही नाराज है कि आशी को सपोर्ट करने के लिए हमने उसे घर से निकाल दिया। आशुतोष ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत यज्ञ को कॉल कर दिया था। उन्होंने वीडियो कॉल किया था तो वहीं दूसरी तरफ यज्ञ ने उनका कॉल देखकर आंखें घुमाई। चलो, इन्हें याद तो आया कि इनका कोई बेटा भी है, यज्ञ ने बड़बड़ाकर कहा और कॉल रिसीव कर लिया था। उसके सामने स्क्रीन पर आशुतोष और काजल दोनों ही थे। यज्ञ ने एक नज़र टाइम की तरफ देखा, वो जिस जगह पर था वहां जरूर शाम के 7 बज रहे थे, लेकिन इंडिया में क्या टाइम होगा उसे अच्छे से पता था। आप दोनों इतनी लेट तक क्यों जाग रहे हैं, क्या आपकी लाडली बेटी आपका ध्यान नहीं रख रही, यज्ञ ने तंज भरे लहजे में कहा। अब तक नाराज हो, आशुतोष बोले, उनके चेहरे पर हल्के अफसोस के भाव थे। क्या आपने मुझे मनाने की कोशिश की जो मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, अफकोर्स नाराज हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये नाराजगी कभी खत्म होने वाली है, यज्ञ ने जवाब दिया। और मैं तुम्हारी नाराजगी अभी खत्म कर दूं तो, आशुतोष हल्का मुस्कुराकर बोले, जिस पर यज्ञ हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। काजल के चेहरे पर भी हल्की स्माइल थी। आशुतोष ने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमेशा से सही थे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन जिंदा है और वो, यज्ञ ने आशुतोष की बात को पूरा भी नहीं होने दिया, वो जल्दी से बोला, क्या सच में आशिका जिंदा है, वो कहाँ है? आशुतोष और काजल कुछ पल के लिए चुप हो गए थे। काजल ने आशुतोष का हाथ सहलाया और आंखों ही आंखों में बात को संभालने के लिए कहा। वो दोनों यज्ञ को बताने के लिए मुंह खोलने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र यज्ञ के पीछे की तरफ गई, जहां आशिका गर्व के साथ घूम रही थी। आशिका को अपने सामने देखकर आशुतोष और काजल अपनी जगह पर जम से गए थे। आशुतोष ने अपनी उंगली उठाई और स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आशिका, आशिका, ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, मैंने बाकी लोगों को आशिका तक पहुँचा ही दिया, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।